श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो 13वीं पुस्तक है, पंचम खंड वर्गणा खंड, उसमें अभी हम कर्म अनुयोग द्वार की चर्चा कर रहे हैं और कर्म अनुयोग द्वार में हम पृष्ठ संख्या 97 पर आ गए, 97। हाँ, आपकी शंका है 91 पृष्ठ पर। हाँ, 91 नीचे से तीसरी लाइन। हाँ, देखो देखो, आपका ऐसा प्रश्न है, यहाँ किसकी बात चल रही है तो उसको अभी आप दोनों आए ना, तो ये जो 6 कर्म है, हमने तो पहले 10 निक्षेप देखे थे, 10 अलग अलग कर्म, उसमें से नाम स्थापना और उसको निकाल दो तो अन्य कौन कौन से रहे, तो एक प्रयोग कर्म यहाँ लिखा, देखो ये 6 कर्मों को आधार मानकर ये बात लिखी है 90 पृष्ठ पर अंत में नीचे नीचे से दूसरी लाइन। देखो, प्रयोग कर्म पहले नाम देखेंगे फिर उसका अर्थ भी देखेंगे। प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, ईर्यापत कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म प्रधान है, ये भाव कर्म के अधिकार में। तभी इसमें प्रयोग कर्म किसको कहा था, आप पहले तो थे, योग को ही प्रयोग कर्म कहा था, उस जीव को, योग वाले जीव को प्रयोग कर्म कहा था। समवदान कर्म किसको कहा था, तो एक साथ अनेक कर्म बनते हैं, ग्रहण होता है 8 या 7 या 6, उसको समवदान कर्म कहा था। अधक कर्म किसको कहा था याद है, औदारिक शरीर को, यानी औदारिक शरीर के जो 9 कर्म स्कंद है, अधक कर्म कहा था। ईर्ष्यापद कर्म, आकाशाय के बिना अकेले योग से बनने वाले कर्म को ईर्ष्यापद कर्म कहा था। तप कर्म का किसे कहा था, जो 12 प्रकार के तप है उसमें ध्यान भी आया, तो जहाँ तक ध्यान है वहां तक वो तप भी कहेंगे, तप कर्म भी कहेंगे। और क्रिया कर्म, क्रिया कर्म में जो हमने देखा था कि 4 यानी शिरोन्नति होती है, प्रदक्षिणा होती है, आवर्त होते वगैरह वगैरह, समय दृष्टि होंगे क्रिया कर्म होता है ऐसा कहा। इन शॉर्ट हमने ये देखा। अब उस पर ये 6 कर्मों पर कौन कौन से अनुयोग हम चर्चा करेंगे, वो 91 पृष्ठ पर पहले जाएंगे, क्योंकि अभी यही विषय चलने वाला है। तो उसमें कहते हैं सत, सत यानी वो है, उसकी बात करें बस। फिर द्रव्य, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभूत, ये जो हम हमेशा जो अनुयोग द्वार देखते हैं इनकी अपेक्षा से इसकी भी चर्चा चलेगी। तो उनमें सत प्ररूपणा की अपेक्षा अब निर्देशन है कथन 2 प्रकार का होगा। ये 6 कर्मों पर घटा है इनको, 6 कर्म है वो जब द्रव्य कर्म की उसकी बात नहीं है, 6 कर्म है प्रयोग कर्म, समाधान कर्म, ये जो है वो 6 उस पर सत प्ररूपणा करेंगे, यानी ये 6 है ऐसी बात करेंगे। तो सामान्य की अपेक्षा क्या करेंगे, वो की अपेक्षा कि ये 6 है बस, ये हो गई सत प्ररूपणा हो गई। अब आदेश की अपेक्षा यानी मार्गणाम की अपेक्षा वो कहाँ कहाँ पर है उसकी बात करेंगे। तो नरगति में कौन कौन से हैं, तो
पुनर्गति में कौन से नहीं है पहले हम देखेंगे इन छह में से, आप विचार कर सकते हैं। देखो हाँ, प्रयोग कर्म होने के योग नहीं है क्या? हाँ, पद नहीं, अलग कर्म है कि नहीं है? औदारिक शरीर नहीं है ना, तो अलग कर्म भी नहीं है, इरियापद कर्म भी नहीं है, तप कर्म भी नहीं है, और क्रिया कर्म तो कहेंगे क्योंकि वो समय दृष्टि है वहां पर। तो यहाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पर, नारकियों में किसी भी लाइन ये पैराग्राफ की, प्रयोग कर्म, समोदान कर्म और क्रिया कर्म होते हैं, बराबर है ना। अभी हम तिर्यंच गति में जाएंगे, जहाँ आपका प्रश्न है तिर्यंच गति में इसमें से कौन कौन से है, तो प्रयोग कर्म है, समोदान है, अलग कर्म है क्योंकि औदारिक शरीर है, पत्र नहीं है, तप कर्म भी नहीं है, क्रियाकर्म है, क्रियाकर्म समय दृष्टि दी जाए है ना, तो क्रियाकर्म है, तो तप कर्म भी नहीं है और इरियापद कर्म भी नहीं है। ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ, अब आगे, अब यही जो अन्य अन्य मार्गणों में कौन से मार्गणा में कितने होते हैं वो बताते हैं। हाँ, ये तो यहाँ तो गति मार्गणा की अपेक्षा बात चल रही है। अब उसमें उन्होंने फिर बताया पंचेंद्रियों की अपेक्षा तिर्यंचों के कितने भेद होते हैं, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच एक तो सामान्य पने कहते हैं, परियंत तिर्यंच योनिमति भी कहते हैं, और पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त भी कहते हैं। अब इसमें से जो हमने देखे थे तो लब्धि अपर्याप्त को में क्या नहीं होगा, हाँ तो क्रिया कर्म नहीं होगा, बाकी हो गए, ये बात क्या है। अब उसके बाद यही जो हमने जो ऊपर देखा था यही किस चीज में एप्लीकेबल है, अब जैसे तिर्यंच और पर्याप्तकों में क्रिया कर्म नहीं होता, वैसे ही मनुष्य अपर्याप्त में नहीं होगा, ये अपर्याप्त नहीं लब्धि अपर्याप्त समझना, पंचेंद्रिय अपर्याप्त में नहीं है, त्रस अपर्याप्त में नहीं है, सब सभी एकेंद्रियों में भी नहीं है, सभी विकलेंद्रियों में भी नहीं है, तो आप कहेंगे एकेंद्रिय विकलेंद्रिय हो तो समझे, फिर दोबारा स्थावर को क्यों लिया, ये प्रश्न है। देखो इंद्रिय मारणा की अपेक्षा अगर हम भेद करेंगे तो एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय आदि भेद हो गए। अब हम अलग अलग मारणाओं की अपेक्षा बात करेंगे, काय मारणा की अपेक्षा बात करेंगे तो षटकाय जीव है, पांच स्थावर और त्रस्तकाय, तो त्रस्तकाय को में तो क्रियाकर्म है परंतु स्थावर काय को में नहीं है, फिर किसमें है, ये मति अज्ञानी में नहीं है, शुद्ध अज्ञानी है, तो सब मिथ्या दृष्टि है ना, विभंग ज्ञानी में मिथ्या दृष्टि है, उनमें भी नहीं है मिथ्या दृष्टि, ये समय दृष्टि यानी समय को मार्गणा की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि लिखा, और संघ असंघी मार्गणा की अपेक्षा असंघी भी लिखा, तो ये सभी जो भंग है वो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों के समान भंग है, यानी इन सभी में क्या क्या होगा, प्रयोग कर्म होगा, समवदान कर्म होगा और अलग कर्म होगा, अन्य नहीं होगी, ये बात ख्याल में आई, ये प्रश्न था ना, और आपके भी यानी आपको भी समझ में आया कि यहाँ विषय क्या चल रहा है। ऐसे ही हमने मनुष्य गति पर 93 पेज पर लास्ट पैराग्राफ में ऊपर से चौथी लाइन, अभी ये जो सात प्ररूपणा पहले हमने देखी, पहले विषय भी क्या चल रहा है उसको, सात प्ररूपणे कौन से गति में कौन कौन से है और वही क्राइटेरिया कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, उतने ही करना, उन्होंने वो लिस्ट 92 पेज पर बताई। अभी सत के बाद दूसरा कौन सा था आपने देखने, अभियोग द्रव्य, द्रव्य ने संख्या देखी जाती है, तो उसमें संख्या जब देखते हैं तो दो प्रकार की संख्या होती है, द्रव्य आर्द्रता और प्रदेश आर्द्रता, तो द्रव्य में क्या समझना और प्रदेश में क्या समझना, द्रव्य में हम संख्या समझते हैं तो जीवों की संख्या हम लेते हैं, और प्रदेश में कई अलग अलग अर्थ में प्रदेश को लिया है, कहीं जीव के प्रदेशों को प्रदेश कहा और कहीं कर्मों के संख्या को, परमाणु के संख्या को प्रदेश कहा, जैसे योग कर्म है ना, प्रयोग कर्म, तो प्रयोग कर्म में जीवों की संख्या वहां ले लेंगे, और प्रदेश आर्द्रता में जीवों के प्रदेश यानी जितने जीवों की संख्या मान लेते हैं सब है, तो उसको एक जीव के प्रदेश कितने हैं, कौन सा असंख्यात है, असंख्यात लोग नहीं, लोग प्रमाण असंख्यात, तो जितने जीव हैं 100 हो गए तो 100 को लोक से गुणा करेंगे तो 100 लोक आ जाएंगे। ऐसे यहाँ जीव असंख्यात हो गए मान लेते हैं तो असंख्यात लोक हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर। यह द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता कहती है। तो इसमें कौन कौन से मैं जीव को लेना या प्रदेश को लेना किसमें कर्मों को लेना, तो जहाँ 8 कर्मों की बात होगी वहां तो कर्मों के प्रदेश गिनेंगे हम। अब यहाँ देखते हैं 93 पेज पर ऊपर से दूसरी लाइन। मैं उनकी शंका अलग है। प्रयोग कर्म तप कर्म क्रिया कर्म में जीवों की द्रव्यार्थता संख्या यानी जीवों की संख्या को द्रव्य कहेंगे और जीवों के प्रदेशों को प्रदेशार्थता कहेंगे यानी प्रदेश कहेंगे। समवदान कर्म और क्रियापद कर्म ये क्या डिनोट करते हैं? समवदान कर्म में जब तक कषाय तो अधिक ये कई समूह रूप से कर्म आते हैं 8 या 7 या 6 और क्रियापद में 1 कर्म आता है फिर भी उसमें परमाणुओं की संख्या लेना प्रदेश में यानी द्रव्य में तो जीवों को ही लेना कितने जीव है जैसे क्रियापद वाले जीव कितने हैं क्रियापद कर्म वाले जीव कितने हैं संख्या है तो उसमें प्रदेश वहां किसको कहना तो कर्मों के परमाणुओं को तो वो आनंद हो गए तो संख्या को आनंद से गुणा करना पड़ेगा। अब अलग कर्मों में हम देखेंगे अलग कर्मों में किसको लिया था मैं औदारिक शरीर के जो 9 कर्म स्कंद है उसको द्रव्य कहेंगे और वो 9 कर्म स्कंद में जितने परमाणु है जो आनंद होते हैं उसको प्रदेश कहेंगे। अब इसी पद्धति से लगानी है। अब आपका जो प्रश्न है ऊपर से चौथी के नीचे से चौथी ऊपर से चौथी देखो ये था प्रयोग कर्म और संवदान कर्म की द्रव्यार्थता रूप से अनंत विभाग कम सब जीव राशि ग्रहण की यह ऐसा क्यों कहा आपको समझ में नहीं आया। प्रयोग कर्म किसको होगा प्रयोग कर्म किसको कहा जीवों को कहा कौन से जीव जिनमें योग पाया जाता है तो जिनमें योग नहीं है ऐसे कितने जीव है अयोग्य भी है सिद्ध जीव भी है तो उसमें कहते हैं अनंत वा भाग कम जीव राशि। देखो पूरी जीव राशि कितनी है सिद्ध भले अनंत है उनसे अनंत गुण है पूरी जीव राशि है यानी सिद्ध राशि पूर्ण संपूर्ण जीव राशि के अनंत विभाग है वो उसमें से बात करेंगे तो जो बाकी जो है संसारी का प्रमाण है उसमें भी आयोग वाले भी घटा देना बाकी सभी प्रयोग कर्म वाले जीव है। समवदान कर्म में भी कहां तक के लिए समवदान वाले हैं 10वें गुण स्थान तक के तो उसमें भी वो अनंत विभाग घटा देना सिद्ध राशि प्लस 11, 12, 13, 14 वाले उसमें से घटा देना 10वें तक ही होंगे क्योंकि 8 कर्म या 7 कर्म या 6 कर्म 10वें गुण स्थान में 6 कर्मों का बंधन है इसलिए 10वें गुण स्थान तक ही समवदान कर्म लेना। उनकी संख्या निकालने के लिए वो जो अकषायी जीव है उनको बात करेंगे हम ख्याल में तो वहां जीव राशि ग्रहण करना प्रदेश आर्द्रता आनंद है क्योंकि वो कर्मों की संख्या से गुणा करना। अब ये जो द्रव्य प्रमाण अनुगम है कहाँ पर 94 पृष्ठ पर एक मिनट मैं फिर पढ़ती हूँ। देखो अभी यहाँ विषय किसका चल रहा है ऊपर से देखते थोड़ा क्रियापद और तप कर्म में द्रव्यार्थक यानी कितने जीव हो गए तो संख्यात हो गए। अब ये ऊपर से दूसरे पैराग्राफ देखते हैं क्रिया कर्मों की द्रव्यार्थता असंख्यात है ये तो सभी जीवों की बात चल रही है हर एक गति के अलग अलग नहीं चल रही है तो सभी चारों गतियों में मिलकर क्रिया कर्म किसके होगा समय दृष्टियों के होगा तो कितने हो गए पहले के असंख्यात विभाग हो गए चारों गतियों के मिलकर और वहाँ प्रदेशार्थता असंख्यात होती है क्योंकि उसको हम जितने जीव है उसको लोक से गुणा करेंगे। अब नीचे के पैराग्राफ में, यहाँ नरक गति में अभी मार्गणाओं में घटित करेंगे। तो नरक गति में प्रयोग कर्म, समवधान कर्म और क्रिया कर्म की द्रव्यता नहीं, वहां भी संख्या घटित करना है। पहले तो हमने है इतना ही घटित किया था, तो कहते असंख्यात है। आपका प्रश्न इसी के बारे में है ना? देखो विशेषता क्या है, समवधान कर्म की प्रदेशार्थता, प्रदेशार्थता द्रव्यार्थता तो नहीं, प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि वो कितने होते हैं तो जगत प्रदर के असंख्यात भाग प्रमाण राशि द्वारा, ये तो नारकियों की संख्या हुई। किसको गुणा करना है, अभोगों से अनंत गुणे सिद्धों से अनंत भाग प्रमाण कर्म प्रदेशों को गुणित करने पर अनंत राशि की उत्पन्न होती होती, ये तो प्रदेशार्थता हुई। द्रव्यार्थता कितनी थी, जगत प्रदर के असंख्यात भाग, ये सभी नारकियों को मिलकर ये इतना प्रमाण होता है। अकेले पहले पृथ्वी की बात करेंगे तो भी जगत प्रदर का संख्या का अभाव होता है, यथा युग है। परंतु दूसरे से नीचे सातवें नरक तक बात करेंगे तो वह श्रेणी के असंख्या का विभाग होता है। एक एक नरक की संख्या जीवों की संख्या की बात है। देखो सभी सातों नरकों की मिलकर जो संख्या है तो जगत प्रदर के असंख्या का विभाग है। अकेले पहले नरक में भी उससे छोटा है फिर भी वह जगत प्रदर का असंख्या का अभाव है। और दूसरे से सातवें नरक के सब मिलकर भी श्रेणी का संख्या और हर एक का भी अपना अपना श्रेणी का संख्या का भाग होता है। यही प्रश्न था ना आपका? अभी उस पर आते हैं, आते हैं वहां पर। देखो अब यहाँ 95 पृष्ठ पर सेकंड लाइन, ये किसकी बात चल रही है? प्रयोग कर्म के दरवाजे ये क्रिया कर्म की प्रदेश आर्द्रता कितनी होती है, क्रिया कर्म किस में पाया जाता है, समय दृष्टि में, यहाँ समय दृष्टि नारकियों की बात चल रही है, तो उनकी संख्या कितनी है, पल्ले क्या संख्या पे हो, समय दृष्टि नारकियों की संख्या, उसी को यहाँ द्रव्यार्थता कहा। और कुछ प्रश्न है? 97 देखो अभी हम इन दोनों के लिए कहते हैं यही बात जैसे नारकियों में घटित की अब तीजेंचों में घटित करेंगे, उनमें भी संख्या की अपेक्षा करेंगे कहाँ कितने तीजेंच है। अब हम 97 प्रश्न पर आते हैं, ये मनुष्य गति में वगैरह वगैरह घटित किया। अब आपका क्या प्रश्न है? नहीं नहीं ऐसा नहीं समझना वहाँ। देखो सर्वार्थ सिद्धि में सब पदों का कथन मनुष्य पर्याप्तकों के समान है, ये संख्या की अपेक्षा लेना। वहाँ जितने कर्म है, अभी वहाँ तो तप कर्म नहीं है उसको तो छोड़ देना, मनुष्यों में अकेले लेकिन तो एरिया पद भी है, ख्याल है ना, अदर कर्म भी है, उसकी बात नहीं। जो वहां पर है कर्म उसमें संख्या कितनी है, तो संख्या है, यानी यहाँ कर्म कितने है उस पर नहीं लागू, ये सत प्ररूपणा नहीं, ये द्रव्य प्ररूपणा है। तो जो उसमें सत है उसमें द्रव्य घटित करना है, उसमें कौन कौन से कर्म होते हैं वो सत प्ररूपणा में बता चुके। तो देवगति में कौन कौन से कर्म होते हैं हमने देखा था, वहां अधर कर्म भी नहीं है, क्रिया पद भी नहीं है, तप कर्म भी नहीं है, क्रिया कर्म तो है। अब ये तो गति मार्गणा की बात हुई थी, अभी हम यहाँ शुरू करते हैं। चलो इस बार में इनका भी समझ में आया क्या विषय चल रहा है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये सभी अनुयोग द्वारा सत स्पर्श, ये समझे सत द्रव्य क्षेत्र स्पर्श सब पर ये सभी मार्गणाएं घटित करेंगे और उनमें ये छह कर्मों की बात होगी, प्रयोग, समवधान, अदा कर्म, तप कर्म, क्रिया कर्म, इरियाबद्ध कर्म और कौन सा रहेगा, छह ही है, छह बताए मैंने। से बदला है, क्रम बदला है। देखो अभी इंद्रिय मारना की बात यहाँ चलेगी, 97 पृष्ठ पर नीचे का पड़ेगा, नीचे से दूसरा। इंद्रिय मारना के अनुवाद से एक इंद्रियों में सब पद अनंत है, सब अने वहाँ जितने एप्लीकेबल है उसकी बात, कौन कौन से एप्लीकेबल है वो पहले सात प्ररूपणा में बता चुके हैं। तो एक इंद्रियों में कौन कौन से पद हो गए, प्रयोग कर्म होगा कि नहीं होगा, होगा समवदान होगा, कर्मों का बंध है, और कौन सा होगा, अधर कर्म होगा, औदारिक शरीर है ना, अधर कर्म होगा, बाकी तो कोई नहीं होगा, ना तप होगा ना क्रिया होगी और ना क्रियापद होगा। हाँ तो ये सभी की संख्या कितनी होगी, जीव तो अनंत है तो अनंत संख्या आती है। इसी प्रकार सब एक इंद्रिय, अभी यही अनंत वाला जो बात है संख्या की, वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है अन्य मार्गणाओं में वो भी बताएंगे। तो सभी एक इंद्रिय सब वनस्पति का एक काय मार्गणा की अपेक्षा कहेंगे वनस्पति इसमें कहाँ पर होगी, जब आनंद कहाँ होगा वहाँ बताओ बताओ, कहाँ की बात आप कहना चाहते हैं, यानी द्रव्य में बताना चाहते हैं। ओग में तो वनस्पति का नाम ही नहीं आएगा क्योंकि ओग में तो बस सामान्य कथन होता है, आप कहाँ की बात पूछना चाहते हैं। ये जहाँ वो इसकी बात आई थी ना, यह एक इंद्रियों का नाम लिया था, उसकी बात आपको याद है शायद। आप मुझे बताना पूछना देख के, इसमें हुआ आप लेशा वाले में देखा था क्या। अच्छा फिर आपको जब भी याद आएगा तो ये पूछ लेना। अभी हम पढ़ते हैं तो ये जो अनंत वाला जो पद है, यानी संख्या कहाँ कहाँ अनंत होगी, तो हमने देखा सभी एक इंद्रियों में है, सभी वनस्पति कायकों में है, मैंने पूरा वनस्पति कायक ऐसा जितना लेना है, प्रत्येक वनस्पति ऐसा कहेंगे तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो प्रत्येक वनस्पति तो असंख्यात होती है, और निरोध जहाँ है तो सबको मिलकर यहाँ बात की है, मध्य अज्ञानी श्रुता ज्ञानी के लिए तो मिथ्या दृष्टि है तो ये सारे एक इंद्रियों में समा जाते हैं, अभव्य सिद्धि मिथ्या दृष्टि, देखो मिथ्या दृष्टि भी यहाँ लिखा और पहले मध्य अज्ञानी श्रुता ज्ञानी लिखा, ऐसा क्यों, वहां तो ज्ञान मारना थी और यह समय को मारना है, वो संगी संगी मारना की अपेक्षा असंगियों में भी अनंत की बात आएगी। यहाँ कहते बांदर वनस्पति का ही प्रत्येक शरीर जीवन का भंग बादर पृथ्वी का ही जीवन के समान है, क्योंकि बादर पृथ्वी का एक होते वो असंख्यात होंगे, ये यहाँ पर बात आई 96 पेज पर ऊपर, आपको जो कहना था ना। पहला पैराग्राफ में देखो सर लेंगे, इसी प्रकार द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्ंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त पंचेन्द्रिय पर्याप्त रस पर्याप्त पृथ्वी जल अग्नि वायु लिया है, वहां छोड़ा था वनस्पति को, और वो बात किसकी चल रही थी, क्रिया कर्म की बात चल रही थी, अधर कर्म की, यानी तिर्यंचों की बात चल रही थी सामान्य से, वो असंख्यात वाली बात चल रही थी, इसलिए वहां पर इसी प्रकार लिया और उसमें से वनस्पति का एक तो नहीं लिया था। वहां जो असंख्यात का प्रमाण चल रहा था उसके लिए इन सबको लिया, तीन में भी असंख्यात होते, तीन में भी असंख्यात होते, जल का एक वायु का एक हो सबको लिया था, वनस्पति का एक को छोड़ा था क्योंकि वे आनंद होते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते जहाँ हम आए थे, 97 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ अभी शुरू करते हैं। विभंग ज्ञानियों का कथन देवों के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? विभंग ज्ञान किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का होता है। हाँ, तो समय दृष्टि का ही क्रियाकर्म होता है। विभंग यानी को अवधि। हाँ, समय दृष्टियों को हम अवधि ज्ञान कहेंगे। समय दृष्टि आहार का योगी और आहार मिश्र का योगी जीवों के प्रयोग कर्म सपकर्म क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है, क्योंकि आहार का योगी संख्यात होते हैं, और प्रदेशार्थता संख्यात लोक प्रमाण, संख्यात को लोक से गुणा किया, प्रदेश में जीवों के प्रदेश लेना है। समवदान की द्रव्यार्थता संख्यात है और उसी की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि यहाँ कर्मों के परमाणुओं से गुणा करना है, क्योंकि संख्यात रूपों से एक जीव के कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर उसकी प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है, तथा अधक कर्मों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता अनंत है। अधक कर्म अवधारित शरीर है, इसलिए अधक कर्मों की दिया। इसी प्रकार संयत सामायिक संयत यानी संयम आगना की अपेक्षा संयत सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत उपमा जरा बराबर दें सामायिक और छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और संयता संयत जीवों का कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपने अपने पदों का प्रमाण जानकर कहना चाहिए, क्योंकि कहीं वो संख्यात हो गए, कहीं उसकी वो प्रदेशार्थता बराबर समझनी चाहिए। देखो, क्योंकि वो संयतों में सभी संयतों में तो संख्यात कहेंगे, और संयम असंयम में कितने कहेंगे? असंख्यात, क्योंकि तीरेंस है ना, वो असंख्यात तीरेंस है उसमें। हाँ, अपगत वेदियों में प्रयोग कर्म समवदान कर्म इरियापद कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है। अपगत वेदियों में भी नवे से सभी लेना है। अपगत वेदी जब कहते हैं तब जब अपगत हो जाता है तभी की हम बात करेंगे ना। क्राइटेरिया बता दिया अपगत वेदी, तो जहां से वेद का उदय समाप्त होता है वहां से ही लेना उसको। तो उनमें प्रयोग कर्म है कि नहीं, योग है वहां पर, कर्मों का बंध भी है, इरियापद वो नवे में इरियापद नहीं परंतु अपगत वेदियों में इरियापद वाले भी है, तो उसको भी लेना है यहाँ पर, तब कर्म भी है। प्रयोग कर्म और तप कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात लोक प्रमाण, प्रदेशों की बात है, संख्यात गुणा लोक। समवदान कर्म और इरियापद कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि वहां तो कर्म से गुणा करना है। अधक कर्मों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता अनंत है। देखो, अपगत वेदी तो संख्यात है परंतु द्रव्यार्थता में अनंत ही है। क्यों? वहां औदारिक शरीरों की संख्या नहीं लेना, नो कर्मों की यानी स्कंदों की, जिसको हम वर्गणाएं कहते हैं, और वर्गणा में परमाणु होते हैं, तो दोनों ही अनंत है। इसी प्रकार अकषाय जो अपगत वेदियों में हमने देखा था, तो अकषाय अभी ये जो हमने ऊपर 1, 2, 3, 4 देखे थे, अकषायों में इसमें से कौन कौन से हो गए और कौन से नहीं हो गए? प्रयोग कर्म है, हाँ, समवदान नहीं है, अकषाय है ना, अभी एरिया पद वाला होगा परंतु समवदान नहीं होगा। समवदान यानी 8 या 7 या 6 कर्मों का ग्रहण नहीं होगा। समवदान कर्मों में अंतशाही अकेला एरिया बन रही है ना, एक साता वेदनी बनती है। ग्यारहवीं बार जब ईर्ष्यापद होगा तप कर्म होगा, तप है ना क्योंकि वह ध्यान है इसलिए तप है। देखो तथा नहीं, ये क्या लिखा किसको, वो कषाय यानी कषाय नहीं है, यानी ग्यारहवा उन्नीस स्थान बारहवा तेरहवा चौदहवा, तो उसमें आठ या सात या छह कर्मों का बंध होता है क्या नहीं होता, सात छ कितना होता है, ग्यारहवें वाले को कितना होता है, अकेला ईर्ष्यापद है ना वहां पर, ईर्ष्यापद है उसको तो हमने ले लिया। तो देखो प्रयोग कर्म और तप कर्म की प्रदेश आदता संख्या लोग है समवधान और उसके अनंत है, अधक कर्म की अनंत है। इसी प्रकार अकषाई, अकषाई में ये सब भंग होगी, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानियों में क्या नहीं होगा ऊपर का समवधान नहीं होगा, बल्कि प्रयोग है और तप भी है, ये या पद भी है, क्रियाकर्म नहीं है ऊपर भी नहीं लिया है, अपगत वेदियों में ऊपर भी नहीं लिया था क्रियाकर्म, ये आगे ध्यान वाले उन स्थान है वहां क्रियाकर्म नहीं है। यथाख्यात व्यास शुद्धि संयतों में भी वही एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो भी ग्यारहवें से होता है। हाँ केवल दर्शियों का भी कथन करना चाहिए, न पुस्तक वेदियों का कथन अचक्षु दर्शन वालों के समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ ईर्ष्यापद कर्म नहीं होता, इसी प्रकार ये न पुस्तक वेदीय क्राइटेरिया है ना, इसलिए ईर्ष्यापद तो नहीं है, तो अपगत वेदी हो जाता है कब, इसलिए इसी प्रकार ये अचक्षु दर्शन वालों के समान क्यों कहा, अचक्षु दर्शन वालों की संख्या कितनी है, अनंत है, एक ही सब लेना उसमें अनंत है, तो नपुंसक वेदी कितने हैं वो भी अनंत है। हाँ इसी प्रकार क्रोधारी चार कषाय वालों का कथन करना चाहिए, मन परे ज्ञानियों का कथन, ये क्रोधारी चार कषाय भी वे भी कितने ही हो गए अनंत हो मन परे ज्ञानियों का कथन संयतों के समान है, संख्या है। इस प्रकार प्रकर हुआ, इस प्रकार द्रव्य प्रमाणानुगम का कथन समाप्त हुआ, यानी छह कर्मों पर हमने सत प्ररूपणा द्रव्य प्ररूपणा देखी, द्रव्य प्रमाणानुगम, अब क्षेत्रानुगम लगाएंगे यानी वो कितना क्षेत्र व्याप्त है उसको देखेंगे, तो क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का, ओग निर्देश और आदेश निर्देश, ओग यानी वो सामान्य से कितना क्षेत्र है वो बताएंगे और आदेश में वो मारना हमें बताएंगे, ओग से ओग है ओग करना ओग से प्रयोग कर्म समवधान कर्म और अधक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है, तो सब कहते सब लोग क्षेत्र है, यानी प्रयोग कर्म वाले जीव, समवधान वाले जीव और अधक कर्म यानी औदारिक शरीर वाले जीव कहाँ कहाँ पाए जाएंगे पूरे लोक में, ईर्ष्यापद कर्म और तपक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है, तो कहते लोक का असंख्या तो अभा, ये तप करने वाले कितने हैं मनुष्य है, लोक का असंख्यात भाग, कहते असंख्यात बहुभाग, हाँ केवल ही समुदाय और सब लोग वो प्रतर लोक पूरण वाला, ये असंख्यात बहुभाग किसको कहा, एक्चुअली असंख्यात बहुभाग है वो प्रतर को और पूरा लोक है वो लोक को, यानी केवल ही समुदाय पूर्ण लोक पूरण वाला, क्रिया कर्मों की द्रव्या ये कर्मों पर क्षेत्र घटित करे, गति की अपेक्षा भी नहीं लगाई वो बाद में लगाएंगे, क्रिया कर्म वाले जीव कितने क्षेत्र रोकते हैं, तो उसकी द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है, तो कहते लोक का संख्यात्वा भाग क्षेत्र है, क्रियाक्रमों वाले कितने हो गए हैं? प्रसंगी पंचेंद्रिय हो गए ना, फिर भी लोक का वह संख्या का अभाव होगा, वो कहाँ रहते हैं उसकी अपेक्षा क्षेत्र आता है, इसलिए लोक का संख्या तो अभाव गया। सभी समय दृष्टि, चारों गति के समय दृष्टि, उर्वलोक अधोलोक भी लिया और तीरे भी जो जहाँ जहाँ है वो भी असंख्या तो भाग में आ जाते हैं सर। इसी प्रकार काय योगी और भव्य उनके भी कथन करना चाहिए। तो काय योगी जीव कितने क्षेत्र में होंगे लोक के? पूरे लोक में। और भव्य वो भी पूरे लोक में, क्योंकि वो कितने सब पूरे सब सभी पर्याय में पड़े सूक्ष्म जीवों में या अन्य जीवों में। अपना यहाँ क्षेत्र का प्रकरण चल रहा है 98 पेज नीचे से तीसरी लाइन। इसी प्रकार औदारिक कायोगी, औदारिक कायोगियों का क्षेत्र कौन सा होगा? पूरा लोक। औदारिक मिश्र कायोगी कहाँ पाए जाएंगे? पूरे लोक में। नपुंसक वेद वाले पूरे लोक में, चारों कषाय वाले पूरे लोक में, और चक्षु दर्शन वाले सभी एक ही है ना। और आहार आहार के आहार मार्गना वाले आहार पूरे लोक में भी कथन करना चाहिए। यह भी क्षेत्र की बात चल रही है, क्षेत्रानुभव की। इतनी विशेषता है कि इन मार्गनाओं में केवल जिनों का भंग नहीं पाया जाता। कार्मण कायोग वालों के भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें इरियापद कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है? देखो क्या कह रहे कार्मण कायोग वाले जी। पहले कार्मण कायोग वाले जीव कब होते हैं? या तो मोड़ वाले विग्रह गति में या केवली समुदात में। कार्मण कायोग है तीन समय के लिए, तो कहते हैं तो इनमें जो इरियापद कर्म है और तप कर्म है उनके तप भी इतने हैं क्योंकि वहां ध्यान भी है, तो उसका क्षेत्र कितना है? तो तीन प्रकार से बताए, लोक का असंख्यात बहुभाग क्योंकि कार्मण का योग चाहिए, दंड और कपाट को उसमें नहीं ले लेंगे, दंड को लेना है तो असंख्यात बहुभाग कहते, अकेले प्रतर को लेना है तो असंख्यात बहुभाग लिया, कार्मण का योग के साथ ही व्यापक लेना है ना तो असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। मेरे ख्याल में आता है यहाँ कर्मों पर क्षेत्र घटित कर रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं परंतु यहाँ दंड को नहीं लेना है। हाँ तीन समय, तो प्रतर कितना है? तो वात्सल्य को छोड़ा है तो असंख्यात बहुभाग है क्षेत्र, और लोक पुराण में पूरा लोक क्षेत्र है। इसी प्रकार अनाहारकों के भी कथन करना चाहिए क्योंकि उन तीन समयों में जो अनाहारक भी है तो अनाहारकों के लिए भी अप्लाई होगा। इतनी विशेषता है कि इरियापद कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है? तो लोक का असंख्या भूभाग और सब लोक क्षेत्र है। उससे भी इतनी विशेषता है कि इनके तप कर्म का लोक के असंख्यात भाग प्रमाण भी क्षेत्र है क्योंकि अयोगी जन की अपेक्षा इतना क्षेत्र उपलब्ध होता है। अनाहारकों में तप कर्म देखो, अनाहारकों में वो केवली जन को भी लिया समुद्र वाले अनाहारको, तो उसमें तो दो ही लिए क्योंकि अनाहारक कब होते हैं? तीन समय में, तीन समय में लोक का असंख्यात भाग और लोक पूरा इतना क्षेत्र है। परंतु अभी अनाहारक कहते हैं तो अयोगी नहीं आए, तो अयोगी जी लोक कितने भाग में? तो असंख्यात भाग में। अयोगी को भी तप कर्म लिया चौथे प्रकार का शुक्ल ज्ञान है ना, हाँ, इसलिए तप कर्म उनके हैं। यह बात सिद्ध हो गई, वायोगी के भी तप है करके। अब आदेश की अपेक्षा, ये तो ओह की अपेक्षा सामान्य से कथन कर दिया, कौन से कर्मों का क्षेत्र कितना है ये बता दिया। अब प्रत्येक गति में वगैरह वगैरह अप्लाई करेंगे, इन्हें आदेश की अपेक्षा क्षेत्र का वर्णन चलेगा। नर गति में नारकियों में सब पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है, सब यानी हमने वहां प्रयोग कर्म देखे थे, समवधान कर्म देखा था, और कौन सा क्रिया कर्म भी होगा ना कोई समय दृष्टि नारकियों में, उसका क्षेत्र कितना होगा, तो उन जीवों की जो संख्या है वो कितने क्षेत्र में व्याप्त है, तो कहते हैं लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र है। इसी प्रकार अभी यही जो लोक का असंख्यात भाग, ये जो क्राइटेरिया इतना कहाँ क्षेत्र हुआ और कहाँ कहाँ होगा, तो सभी नार की पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक में किसको लेना, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमति और पंचेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त, ये तीनों का क्षेत्र कितना है लोक का संख्या का भाग। मनुष्य अपर्याप्त लिया, फिर अकेले पंचेन्द्रिय अपर्याप्त को भी लिया, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, सब विकलेंद्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, ये सभी पर्याप्त जीव यहाँ लिए, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त, बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादल निवर्त प्रतिष्ठित पर्याप्त, इनका क्षेत्र कितना है, तो लोक का असंख्यात भाग है, इसकी अपेक्षा इसमें सिमिलैरिटी है। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रेक का योगी, वैक्रेक मिश्र का योगी, आहार का योगी, आहार मिश्र का योगी, स्त्री वेगी, पुरुष वेगी, नपुसक वैरी को क्यों छोड़ा, हाँ पूरा लोक है उसका क्षेत्र, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, हाँ बराबर है, तिर्यक लोक में पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त कहाँ पाए जाएंगे, कर्म भूमि में होगी, भूभूमि में तो नहीं होगी, लब्धिया पर्याप्तों की बात नहीं है, तो लोक का संख्या ही भाग हो जाता है, वो मनुष्य लग और बाहरी वो स्वयं ब्रह्मण द्वीप और समुद्र, विभंग ज्ञानी, आभिनिबोधिक ज्ञानी, देखो ये आभिनिबोधिक तो चारों गति में हो गए, फिर भी वो लोक का संख्या तो भाग है, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी, सामायिक संयत, चरोपस्थापना शुद्धि संयत, संपत हुआ संयत, परिहार विशुद्धि, अवधि का धीर भी बराबर दिख रहा था क्या, अवधि ज्ञानी, सूक्ष्म सामायिक संयत, संयता संयत, चक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, पीतलेशक, देखो पीतलेशा वाले, देखे पीतलेशा वाले कहाँ पर पाए जाएंगे, मनुष्य तिर्यंच और स्वर्ग, स्वर्गों में भी वो भवन त्रिक में और सौधर्म ईशान में, ऊपर तो नहीं होते हैं। पीतलेशक, पद्मलेशक, वेदक समय दृष्टि, उपशम समय दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि और संघी मार्गना वाले जीवों के कहना चाहिए, सभी पंचेंद्रियों को भी ले लेंगे तो भी वो असंख्यात भाग ही हो जाता है। इतनी विशेषता है कि बादर वायु का एक पर्याप्त को में सब पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता क्षेत्र, उसके क्षेत्र लोक का संख्यात भाग है। देखो वायु का एक में तो एक तो सभी तो वात वाले होते ही हैं, हर पृथ्वी के नीचे भी होते हैं 20-20 हजार योजन के, और ये जो 5 राज्यों तक वो तो पाए जाते हैं, पर्याप्त वायु का एक्जिट मध्यरो से लेकर पांच राज्यों तक वो पाए जाते हैं, इसलिए उसको संख्या तो भागा। तथा अधर कर्म का क्षेत्र सब मार्गणाओं में सब लोक प्रमाण है, ऐसा कहना चाहिए। अधर कर्म है औदारिक शरीर का जो क्षेत्र है वो सब लोक प्रमाण। कहाँ पर बादर वायु का एक पर्याप्त को भी लिया, परंतु सबके साथ लिया, परंतु एक्सेप्ट उसमें क्या एक्सेप्शन है उसको भी बता दिया। हाँ, पांच राज्यों तक है। हर पृथ्वी के नीचे तो होता ही है, हर प्रत्येक पृथ्वी ना आठों पृथ्वी के नीचे 20-20 हजार योजन तो तीनों ही बात वाले है ही है, और ऊपर तो थोड़ा होता है जो जहाँ पॉसिबल है। होगी सर्वार सिद्धि सेल्फ को 20 हजार में आएगा, क्योंकि उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर वो तो होगा सब जगह, उसकी बात कहाँ है। वायु का एक जीव सूक्ष्म वायु का एक सर्वत्र है, या बादल वायु का एक उनकी बात चल रही है ना, उनकी बात मुख्यतः से है ना, इसलिए वो संख्या तो हो जाता है। सभी बात वाले हम बोले हैं ना एक साथ, हर एक पृथ्वी के नीचे बात बोले हैं। देखो ये जो सब लेके बादर बादर लिखे तो बादर पृथ्वियों के आधार से ही बाकी है, बादर वनस्पति है, बादर जल है, बादर अग्नि है, वो तो पृथ्वियों के आधार से होते हैं। पृथ्वियों में भी जो देखो पर्याप्त है वो एक पर्याप्त ऐसे होते हैं जिसके आधार से निर्भर रहते हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित जिसको कहते हैं, हाँ दोनों की संख्या अलग लेने के लिए अलग ही है। तथा अदर कर्म का क्षेत्र सब मार्गणाओं में सब लोग प्रमाण है, ऐसा कहना चाहिए। अब तीर्यंच गति में तीर्यंचों में अपने अपने पदों का क्षेत्र ओर के समान है, ओर के समान है, वहां जितने कर्म पाए जाएंगे उन कर्मों में जो योग में सामान्य से बात की थी कौन से कर्म का क्षेत्र कितना उतना उसमें लगा देना। इसी प्रकार असंयत कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले और कपोत लेशा वाले जीवों के भी कहना चाहिए। मनुष्य गति में ये कृष्ण नील कपोत लेशा वालों में तो पूरा लोक हो जाएगा, एक इंद्रियों में पाया जाता है ना मुख्यतः तीन अशुभ लेशा है, लेकिन उनके तो पूरा क्षेत्र है, पूरा लोक नरकों में नहीं होता है। परंतु देखो अन्य कर्मों में तो जीव लिए, जैसे प्रयोग कर्मों में जीवों की बात है और इसमें औदारिक नौ कर्म वर्गणाओं की बात है, अधर कर्म पृथ्वी का एक भी है ना औदारिक, एक इंद्रिय है ना सारे, एक इंद्रियों की औदारिक नौ कर्म वर्गणा है कि नहीं, तो पूरे पूरा लोक ही है उसमें, एक इंद्रिय पूरे लोक में। नहीं नहीं अधर कर्म औदारिक शरीर वालों को लेना, तो पूरे लोक में एक इंद्रिय जीव है कि नहीं है, सूक्ष्म भी ले ले रहा हूँ उसमें, हाँ परंतु एक इंद्रिय है ना सब। हाँ बाकी तो है एक इंद्रियों में ही औदारिक अधर कर्म है, हाँ भले नहीं मगर सूक्ष्म एक इंद्रिय है कि नहीं है, हमें तो पूरे लोक में अवतार के लिए अदर कर्म है कि नहीं इतना ही देखना है। अपना विषय क्या है अभी अदर कर्म संबंधी। अब मनुष्य गति की बात करें, मनुष्य गति में मनुष्य जब मनुष्य कहते हैं तब सामान्य मनुष्य, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आते हैं। मनुष्य पर्याप्त मनुष्य नियम में प्रयोग करना, समाधान करना, ये भी आप रह गया। पत्र करना और तपक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग सके ऊपर देंगे। लोक का असंख्यात भोगाग और सब लोक है। देखो क्या कहते हैं, पहले पहले प्रयोग कर्म और समाधान कर्म कितना होगा, लोक का संख्या होगा। एरिया पद कर्म और तप कर्म कितना होगा, हाँ तो उसमें वो समुदाय की अपेक्षा लेना, उसमें असंख्या तो भाग भी ले सकते हैं, बहुभाग भी ले सकेंगे और पूरा लोक। तो सामान्य मनुष्यों में तो केवल आते हैं उसको तो समझे, मनुष्य पर्याप्तों में भी आते हैं, मनुष्य नियो में आएंगे कि नहीं आएंगे। अपगत वेद होगा, हमारा क्राइटेरिया मनुष्य जी का है, क्यों नहीं होगा, ये भाव स्त्री वेद की बात है, ये कल मैंने बताया था यहाँ। मनुष्य जी जब कहते हैं तो द्रव्य स्त्री की बात नहीं है, भाव वेद भाव स्त्री वेद वाले भी मोक्ष जाते हैं कि नहीं उसी पर्याय में, तो वे अपगत वेदी होते हो क्यों, फिर भी उसको कहेंगे क्या, मनुष्य जी कहेंगे, उसकी बात है यहाँ पर। यदि हम वेद का क्राइटेरिया लगेंगे लगाएंगे अपगत वेद ही लगाएंगे तो उसमें वो मनुष्य नहीं थी क्या, कौन थे वो, उसको नहीं देखेंगे, मनुष्य था का नहीं था। क्राइटेरिया क्या होगा, यदि हम स्त्री वेद का क्राइटेरिया लगाएंगे तो नवे गुण स्थान तक की बात करेंगे, यदि हम मनुष्य नहीं कहेंगे तो वो जीव अपगत वेदी होकर मोक्ष जाता है उसको भी ले लेंगे। कौन सा समाधान कर्म लोग के असंख्या भाग में आ गया, जो यथा योग्य है ना इसलिए उसको लगा लेना। देखो ये सभी जो करना है वो पहले असंख्या भाग में आ जाते हैं, और ये आपद और तप कर्म है वो लोग का असंख्यात बहुभाग और असंख्यात पूरा ही, असंख्यात नहीं पूरा भाग आता है। अदर कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता क्षेत्र सब लोक है, तथा क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग है, क्योंकि क्रिया कर्म ये ऊपर के ध्यान वाले गुण स्थानों में नहीं लगाना, यानी जो श्रेणी वाले वगैरह जीवों में उसको नहीं लेना। इसी प्रकार पंचेंद्रिय द्विक, यानी पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस द्विक और शुक्ल लैशा वाले जीवों के सब पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का क्षेत्र जानना चाहिए। यह के ऊपर मात्रा स्पष्ट है, एक इंद्रियों में सब पदों का क्षेत्र सब लोक है। इसी प्रकार मादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, मादर जल का एक अपर्याप्त, बादर अग्नि का एक अपर्याप्त, बादर वायु का एक अपर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, बादर निगोद पर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्त, वे ही पांचों स्थावर का एक तथा उनके सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अज्ञानी भोग अभोग सिद्धिक मिथ्या दृष्टि और असंगी उनके कहना चाहिए। में विचार कर रही थी, हाँ देखो क्षेत्र में, यहाँ क्षेत्र की बात चल रही है, तो क्षेत्र में कौन कौन सी बातें आते हैं, क्षेत्र किस किस को गिनते हैं मालूम है? देखो क्षेत्र में 10 बातें आती हैं। एक तो रहने का ठिकाना, जिसकी अपेक्षा आप कहेंगे बादल को पूरा लोग कैसा दिया है ना, तो एक तो रहने का ठिकाना होता है, उसको कहते हैं स्वस्थान। स्वस्थान विहार करके जाते हैं उसको कहते हैं विहार और स्वस्थान। फिर कषाय वाले सात, समुदाय में कषाय नहीं, समुदाय सात प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वेदना, कषाय, फिर मारणांतिक, ये यहाँ मारणांतिक सिद्ध होगा, ये तीन समुदाय हुए। फिर वैग्रेह, तेजस, आहार और केवली समुदाय, और उपवाद नाम का एक होता है। उपवाद यानी जन्म का पहला समय। तो जन्म का जो पहला समय है, अभी कोई सूक्ष्म में से वो बादल में आने वाला है जी, तो वो भी उसका पहला समय वो जहाँ कहाँ है वहां सिद्ध हो सकेगा। उस अपेक्षा से पूरा लोक उसका क्षेत्र है, कहीं से भी उस पर्याय में आ सकेगा और उस पर्याय में से कहीं भी जा सकेगा। मानना थी समुदाय से भी पूरा लोग भरा है सभी प्रकार के जीवन से, इस तरह से उसको गठित करना चाहिए। हाँ बादल निगोद भी, बादल निगोद किसी के आधार से है, ये समुदाय की अपेक्षा सभी जगह पाए हैं। यहाँ तो नीचे तो पूरे बादल निगोद है ही है, रस नाली के बाहर भी पूरा सातवें पृथ्वी के नीचे किसको? वायु, वहां नीचे है ना वायु आतुल है। अब हम सब अपने अपने आदेश सुने सभी के इसमें अपने के दिया सब ले क्षेत्र है। अब होगा तो एक वालों में सब पदों का लोक का असंख्यात भाग, लोक का असंख्यात भूभाग और सब लोक क्षेत्र है। इसमें भी वो अपर वेरी वाले नौवे का ही नहीं भाग है, दसवें वाले है, वो तो असंख्यात विभाग में आ जाएगी तेरहवे चौदहवे तक। और जो केवली समुदाय करते हैं वो असंख्यात भूभाग और पूरा लोक आते हैं। इसी प्रकार केवल ज्ञानी कौम कौम लगाना, वो कषाई फिर कोमल लगाना, केवल दर्शनी और यथाकार विशुद्धि संयत जीवों के कहना चाहिए तथा इसी प्रकार संयतों के कहना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्मों का क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग है, क्योंकि संयत कहेंगे तो छठे से सब आए तो क्रियाकर्मों वाले असंख्यात भाग में होंगे। इसी प्रकार समय दृष्टि और शायद समयोजन से दृष्टियों के कहना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र अनियोग द्वार का कथन समाप्त हुआ। अब स्पर्शन अनियोग द्वार, स्पर्शनानुगम की अपेक्षा। क्षेत्र में तो वर्तमान की अपेक्षा है, स्पर्शन में तो अतीत काल को भी लेते हैं, वर्तमान से ही अतीत को भी लेगा। स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, भोग निर्देश और आदेश निर्देश। ये फुल स्टॉप देना। ओग से सब पदों का अतीत और वर्तमान की अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र के समान है। ये जो वर्तमान में कहाँ पॉसिबल है वही वो भूतकाल की अपेक्षा भी है, ओग की अपेक्षा से। यहाँ इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्म का स्पर्शन अतीत की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। क्यों ऐसा कहा? क्रियाकर्म किसके होता है? समय दृष्टियों के। अभी जो विहार करके जाने वाले ऐसे समय दृष्टि कौन है? देव है ना, हाँ तीसरे पृथ्वी तक जाते हैं, मानांतिक की जरूरत नहीं है, विहार की अपेक्षा ही जाते हैं ना नीचे। वो नहीं आते हैं परंतु वो वहां पर ही स्थित है कि नहीं है, और कोई नीचे जाते हैं, नीचे तक जाते हैं। ऊपर जो है अपनी जगह स्थित है और कोई नीचे तक जाते हैं तीसरी पृथ्वी तक। सब मिलकर ले लेना। तीसरे नरक तक ही जाते हैं, परंतु क्रिया कर्म वाले कहाँ तक है, सर्वा सिद्धि वाले तक है, वो अपनी जगह तो है ना स्थिर। अब व्यवहार कर, जो व्यवहार करने वाले कैसे हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, व्यवहार करने वाले कौन से हाँ तीसरे तो कौन से जीव जाते हैं, सोलह तक के जाएंगे। सीता भी जाती है ना, सोलह के जाएंगे, उसके ऊपर के नहीं जाएंगे। तो सोलह का सर्ग कितने राज्य ऊंचाई पर है, पांच राजो, तो वो पांच राजो होगा, तीसरे पृथ्वी तीन राजो, हाँ आठ हो गए। क्योंकि स्पर्शन में क्या लेना है, वो बहुत से जीव होते जाते थे, नहीं वो ऊपर ऊपर के इस तरह से बीच बीच में असंख्या योजना का गैप है ना, ऊपर के जाते नहीं है, उनका अकेला स्वस्थान गिनना पड़ेगा, उनका विहार नहीं गिनना। ग्रह व्योम के जीव वो विहार करके नीचे नहीं जाएंगे, सोलह तक का वो विहार ले लेना। अब नरक गति में नारकियों ने प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का स्पर्शन वर्तमान की अपेक्षा क्षेत्र के समान है। अतीत काल का आश्रय कर मानांतिक और उपपाद की अपेक्षा, यह अतीत काल में मानांतिक की अपेक्षा वो सारा बहुत सारा घटित होगा, क्योंकि अलग अलग जीव अलग अलग जगह से वो जाते हैं और अलग अलग जगह उत्पन्न होते हैं, तो पूरा जितना जितने नीचे है सातवें नरक का है, तो वे पूरे ही छह राज्य तक का उसका डिस्टेंस काउंट करना पड़ेगा, और फिर मानांतिक करके कहाँ तक उत्पन्न होगा उसको भी देखेंगे। तो मानांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा, मानांतिक है वो नरक की मरण करके सातवें नरक का जाएगा तो तीन इंच में जाएगा, ऊपर के जो है तो मनुष्य तीन इंच में जाएंगे, और उपपाल वाले नार की तीन इंच मनुष्य मर कर नीचे जाते हैं उसको देखना, उपपाल की अपेक्षा कुछ कम। छह बटे चौदह भाग प्रमाण है, कुछ कम क्यों कहा, ये जो छठी पृथ्वी है ना उसके नीचे के किनारे के बिल सेंटर में होते हैं, नीचे हजार हजार योजन छूटते हैं, तो कुछ कम है ले लेना उसको। क्रिया कर्म का वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है, अतीत स्पर्शन भी क्षेत्र के समान ही है, इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए। ये छह बटे हो गए का सातवीं पृथ्वी की अपेक्षा होता है, इतनी विशेषता है कि यहाँ क्रिया कर्म का मारणांतिक और उपपाद पद नहीं होता। क्या बात है, क्रिया कर्म का मारणांतिक क्यों नहीं होता सातवीं में, क्योंकि मारणांतिक अवस्था वो मिथ्यात्व अवस्था में वो आयु का बंधन भी होता है, और फिर मारणांतिक भी उसी अवस्था में करेगा, आयु का बंधन भी मिथ्यात्व अवस्था में होता है और बाद में वो मारणांतिक करेगा तो वो भी मिथ्यात्व अवस्था में होगा, और उपपाद वहां जन्मने वाले कोई समय दृष्टि जन्मते नहीं है, इसलिए वहां क्रिया कर्म को नहीं लिया है। सातवें नर के हिसाब से बात है, तो सातवें नर के इन दोनों को छोड़कर क्रिया कर्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहां समय दृष्टि है। पहली पृथ्वी में अभी पहली पृथ्वी की बात चल रही, अतीत और वर्तमान की अपेक्षा क्षेत्र के समान स्पर्शन है। दूसरी से लेकर छठवीं पृथ्वी तक वर्तमान की अपेक्षा सब पदों का क्षेत्र के समान स्पर्शन है, तथा अतीत की अपेक्षा प्रयोग कर्म और संबोधन कर्म का मानांतिक समुद्घात अनुभव करना और उपपाद पद की दृष्टि से अभी कौन सी पृथ्वी कितने नीचे है उसकी अपेक्षा ही बात करेंगे। क्रमशः कुछ कम एक बटे चौदह भाग, यानी एक राज्य नीचे है ना, तो एक कुछ कम एक बटे चौदह लिया पहले पृथ्वी के लिए, कुछ कम दो बटे चौदह भाग, कुछ कम तीन बटे चौदह भाग, कुछ कम चार बटे चौदह भाग, और कुछ कम पांच बटे चौदह भाग प्रमाण स्पर्शन है। क्रिया कर्म का इनके ऊपर रफार बराबर देना है, क्रिया कर्म का अतीत और वर्तमान की अपेक्षा स्पर्श क्षेत्र के समान है। छठे तक के समय दृष्टि नार के मर कर ज्ञान आनंद समुदाय करेंगे तो उसके अपेक्षा ये पूरा क्षेत्र लिया स्पर्श में क्रिया क्रमक में भी तीर्यंश गति में तीर्यंशों में प्रयोग कर्म समवदान कर्म और अलग कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोग है। तीर्यंश गति में पूरा लोक ले लेगा उसमें क्रिया कर्म वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है। क्रिया कर्म में तो पंचेंद्रिय ही लेना तीर्यंश मानादी पद की अपेक्षा अतीत स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। क्रिया कर्मों में मानादी लिया ये सर्वे सर्वे तो जाते हैं ना मानादिक पद की अपेक्षा क्रिया कर्म वालों की बाकी फिर तो एक राजा है ना सेंटर में से, ये पूर्व से पश्चिम तक गए मान लेते हैं और फिर ऊपर चढ़ गया तो होगा ना। देख रहे पूरा पूरा ले जाना, ये मध्य लोक है ना तो यहाँ का कोई जीव है तो यहाँ तक गया और फिर ऊपर चला गया इसमें। हाँ मध्य लोक में ही है ना वो त्रसनाली ही है, ये एक राज्य त्रसनाली है तो त्रसनाली के ऐसे ऐसे उस देश पर गया फिर ऊपर चला गया। विग्रह गति जैसे ही होता है दो मोड़ का एक ही मोड़, हाँ दो मोड़ ऐसे भी अंदर जा सकता है दो मोड़ में तो पहुंच ही जाते हैं, एक तीन मोड़ तो एक नियम को ही लगते हैं वही घटित होगा। नहीं 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 वो जो हमने देव की बात की थी ना आठ बटे में पहले पहले आठ बटे चौदह नहीं वो भी वो आड़ा वो तो कहीं भी गमन करते हैं विग्रह गति में वो आड़ा जाके नीचे जाने का वो विग्रह गति जैसे है जिस रूट से जाता है ना विग्रह गति में उसी रूट में आड़ा नहीं करता है वो तो उसका नियम है। हाँ वो पहले पहली लाइन में घोटाले हमेशा होते हैं कुछ अभी हम बढ़ेंगे आगे। हाँ ये पहले वाला स्पर्शन वाला अधिकार निकाल के देखना पड़ेगा, चौथी पुस्तक थी कौन से थी क्षेत्र और स्पर्शन था ना उसमें छठी पुस्तक नहीं छठी में तो चुली का थी छठी में तो जब सूक्ष्म समय को गए उसकी बात आई थी चौथे में होना चाहिए क्योंकि दूसरा द्रव्य प्रमाण था पहले दो ही साथ थे तीसरा द्रव्य प्रमाण और चौथा क्षेत्र था क्षेत्र और स्पर्शन पांचवे में काल और अंदर देखा था पांचवी पुस्तक में। हम पढ़ेंगे अभी आगे ना पंचेंद्रिय दिव्यंद्र तीर्थ के सब पदों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है क्योंकि पंचेंद्रिय दिव्यंद्र लोक के असंख्यात विभाग में अतीत स्पर्शन स्पर्शन ही हुआ अतीत स्पर्शन सब लोग हैं अतीत में वो मारणांतिक वगैरह चले जाना इतनी विशेषता है कि अलग कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोग है। क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन सामान्य दिव्यंद्रों के समान है पंचेंद्रिय दिव्यंद्र उपर्याप्त के प्रयोग कर्म और समाधान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है अतीत स्पर्शन सब लोक है। अधर कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक है ये औदारिक शरीर है ना उसमें मनुष्य गति में मनुष्य पर्याप्त मनुष्यनियों में सब पदों का अतीत और वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है इतनी विशेषता है कि प्रयोग कर्म और समाधान कर्म का अतीत स्पर्शन सब लोक है यहाँ भी उपवाद और मारणांतिक की अपेक्षा लगाना तथा मनुष्य अपर्याप्तकों का पंचेंद्रिय दिव्यंश अपर्याप्तकों के समान स्पर्शन है। देवगति में देवों में प्रयोग कर्म समवधान कर्म और कर्मों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। अति स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण, 14 के बाद कॉमा नहीं चाहिए, वो कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण है। ये बिहार करके गए और वहां से महाराज टिक गया नीचे गए और नीचे जाकर उन्होंने मारना दिख किया और ऊपर साथी पृथ्वी ने किया। पृथ्वी का एक हो सकते हैं किंतु इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्मों का अति स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। इसी प्रकार यानी जितना विहार करते हैं उतना ही होगा, वो तो पृथ्वी का एको में नहीं जाएंगे इसलिए उसको नहीं लिया, यानी वो मारना नहीं करेंगे नहीं तभी मध्य लोक में आएंगे। इसी प्रकार भवनवासी अंतर ज्योतिषी और सौधर्म ऐशान स्वर्ग के देवों के कहना चाहिए, यानी जो सामान्य से बात की वो इनकी अपेक्षा से की है। सनत कुमार से लेकर सहस्रांत के देवों में सब पदों का यही स्पर्शन है किंतु इतनी विशेषता है यहाँ 9/14 भाग प्रमाण स्पर्शन नहीं है क्योंकि वे केंद्रियों में जन्म नहीं लेते, इसलिए वो 9/14 वाला महारांतिक समुदाय उसमें सिद्ध नहीं होगा। विहार की अपेक्षा जो कुछ है वो सिद्ध होगा। आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्प के देवों के सभी पदों का स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। ये उन्हीं की अपेक्षा 6/14 कहाँ था पहले भी, यहाँ 8/14 भाग स्पर्शन नहीं है। अब हाँ वे नहीं जाते ऐसा है ना, इसमें से तो 12 तक ही जाएंगे। क्या वो इसमें आने की अपेक्षा है माना कि अदर्शन अदर्शन ग्रह से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों के तीनों ही पदों का अतीत और वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है, उनका विहार नहीं है, इसलिए जो जहाँ है उसी की अपेक्षा उसकी बात की। इंद्रिय मारणा के अनुवाद से एक इंद्रियों में प्रयोग कर्म समवदान कर्म और अधर कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक है। विकलेन्द्रियों के उक्त सब पदों का स्पर्शन पंचेन्द्रिय तीरेन्द्र पर्याप्तकों के समान है। पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग है प्रमाण है। अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण और सब लोग प्रमाण है। पंचेन्द्रिय ने सभी चारों गति के पंचेन्द्रिय लेना, इसलिए ये बात सिद्ध होती है। केवल ज्ञानियों की अपेक्षा लोक के असंख्यात भाग प्रमाण, लोक के असंख्यात करना बहुभाग प्रमाण और सब लोग स्पर्शन है। ये पंचेन्द्रियों में सब लोग स्पर्शन वो केवल समुदाय की अपेक्षा लेना। अधर कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोग है, सब लोग प्रमाण है। इरियापद कर्म और तप कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण, लोक के असंख्यात भूभाग प्रमाण और सब लोग प्रमाण है। क्रिया कर्म की अपेक्षा वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। फुल स्टॉप देना है यहाँ पर। देवों की अपेक्षा ही ले रही है। पहले हमने जो देखा था 8/14 पंचेंद्रिया पर्याप्त कौन के वहां संभव पदों का स्पर्शन पंचेंद्रिय तीर्यंश अपर्याप्त कौन के समान है। इंद्रिय मारणा ये भी काय मारणा, काय मारणा के अनुवाद से पृथ्वी कायिक जल कायिक अग्नि कायिक वायु कायिक और वनस्पति कायिक जीवों के तथा इनके बादल और बादल अपर्याप्त जीवों के तथा बादल निगोल और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के तथा पांचों स्थावर कायिक सूक्ष्म और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवों में जीवों के प्रयोग कर्म समवदान कर्म और अधर कर्मों का अतीत और वर्तमान कालीन स्पर्शन सब लोग प्रमाण है। बादल पृथ्वी का ही पर्याप्त, बादल जल का ही पर्याप्त, बादल अग्नि का ही पर्याप्त और बादल वनस्पति का ही प्रत्येक शरीर पर्याप्त तथा त्रस अपर्याप्त जीवों के यहाँ संभव पदों का स्पर्शन पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के समान है। इतनी विशेषता है कि बादल वायु का एक पर्याप्त के वर्तमान स्पर्शन लोक के संख्या भाग प्रमाण है। ये पहले भी बात आई थी अपनी त्रस द्वीप के सब पदों का स्पर्शन पंचेंद्रिय द्वीप के समान है। अब योग मारण, योग मारणा के अनुवाद से पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी, देखो चार तो उसके जो भेद है सत्य सत्य उभयानुभय और पांचवा है सामान्य, भेदों की विवक्षा किए बिना तो उसको सामान्य कहेंगे, इसलिए पांच पांच मनोयोगी वचन योगी कहेंगे। उन जीवों के सब पदों का स्पर्शन पंचेंद्रिय पर्याप्तों के समान है। इतनी विशेषता है कि इन योगों के रहते हुए केवल समुद्रात नहीं होता। पांच हो गया ना, पांच मनोयोग और वचन योग के रहते हुए वहां का योग होता है, का योग होता है उनके नहीं बाद में ही करते। देखो मनोयोग और वचन योग की अवस्था में ही समुद्रात नहीं करते, उन जीवों के तो योग पाया जाता है, परंतु जब समुद्रात करते हैं तो कौन सा योग है उनके दंड नहीं नहीं दंड अवस्था में का औदारिक का योग है, कपाट में औदारिक मिश्र है, फिर कारमान का योग है, इसलिए केवली समुद्रात अवस्था में ये क्या लिखने मनोयोग और वचन योग नहीं होते। जिस समय वो केवली समुद्रात कर रहे हैं वो 8 समय के बाद है, उस वक्त उनके मनोयोग वचन योग नहीं होंगे और उनके भी ये जो पांचों है ही नहीं है जो यथायुग है वो भी उस समय नहीं होंगे। ये बात है का योगी जो उनके सब पदों का स्पर्शन ओघ के समान है, यानी का योगी कहाँ है तो ये पूरा लोग कहेंगे। औदारिक का योगी उनके सब पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। विशेषता है कि इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म का अतीत स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। औदारिक वाले लिए ना जो हमने 3 इंचों में गठित किया था 6/14 औदारिक मिश्र का योगी जीवों के वहां संभव सब पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। वैक्रिय का योगी जीवों में सब पदों का वर्तमान कालीन स्पर्शन क्षेत्र के समान है और अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण और कुछ कम 13/14 भाग प्रमाण है। किसकी बात चल रही है? वैक्रिय का योगी जीव, वैक्रिय का योगी तो देव और नार के सबको लेना पड़ेगा, वैक्रिय का योगी है क्षेत्र लिया। आठ बटे चौदह तो देवों की अपेक्षा होता ही है। आठ बटे चौदह विहार की अपेक्षा विक्रय काय की जो में सब पदों का वर्तमान कालीन स्पर्शन क्षेत्र के समान है। अतीत स्पर्शन मानादिक अवस्था में उनका भोगन माना विक्रय काय वाले मानादि समुदाय करेंगे उसकी तब की बात है। उनके कायोग तो वही ऊपर चलेगा ना, मानादि समुदाय तो अवस्था में कायोग तो चल रहा है, ऊपर और नीचे दोनों में होगा। देखो सर्वासिद्धि वाले मानादि करेंगे तो कहां तक करेंगे, मध्य लोक तक, और सातवीं पृथ्वी वाले करेंगे तो कहां तक करेंगे, सातवें पृथ्वी ने सातवें नरक वाले। हाँ तो नीचे वो सातवें नरक वाले हैं, वो छह राजू तक है, छह राजू तक है, और ऊपर तो सात राजू तक है। अपना क्राइटेरिया वैक्रिय कायु वाले, वो विक्रिया नहीं कर रहे हैं। हाँ आनंद जीवों की तो एक जीव के तो नहीं लेना है, जो कोई वैक्रिय कायु वाले है उसकी बात। इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का स्पर्शन तेरह बटे चौदह भाग प्रमाण नहीं है। क्या देखो यहाँ जब स्पर्शन की बात है तो अतीत काल, अतीत काल तो अनादि से कम करेंगे तो क्रिया कर्म वाले तो सातवें नरक से नहीं लेना है, इसलिए उसको तेरा तेरा बटे वाला नहीं लेना। उसमें सातवें नरक का समय के साथ नहीं मारना करेगा, इसलिए उसको नहीं लेना। वैक्रिक मिश्र कायु जो उनका स्पर्शन क्षेत्र के समान है, देखो सात पृथ्वी जो हम सात पृथ्वी कहते हैं नरक, तो सात नरक जो है सात पृथ्वी छह राजू तक है, नीचे एक राजू तो वो तो स्थावर लोक है उसका, तो नरक तो छह राजू तक है। वैक्रिक मिश्र कायु जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, आहार कायु जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, कारमान का योगी जीवों में स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्मों का अतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह भाग प्रमाण है। कारमान का योगी में लिया, कारमान का योगियों में क्रिया कर्म वाले विग्रह गति वाले ले लिया। वेद मार्गणा के अनुवाद से समाप्त होगा।